हरे कृष्णा कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली ब्रह्मचारियों श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक का आज हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। तो आइए 42वां श्लोक पढ़ते हैं। तस्माद् अज्ञान सम्भूतम् हृदयस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तत्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत। तस्माद् का अर्थ क्या होगा? वैसे सामान्य आपकी भाषा में तस्माद् इसलिए, इसलिए इससे पहले जो कहा है इसलिए। अज्ञान संभूतम हृदय, हृदय स्तंभ, अज्ञान संभूतम हृदय स्तंभ, हृदय में जो अज्ञान के कारण अंधकार है। ज्ञान आसीन, ज्ञान की तलवार से, आसीन का मतलब तलवार से, आत्मन छित्तत्वम संक्षम, जो संक्षय है उनको समाप्त करो, किससे करो? योगम, योग से करो। कौन से योग से करो? निष्काम कर्म योग, क्योंकि विषय निष्काम कर्म योग का चल रहा है। निष्काम कर्म योग में स्थित होकर हृदय में जो अज्ञान है उसको ज्ञान के खड़ग से खत्म करो। फिर क्या करूं? आतिष्ठ, आतिष्ठ उतिष्ठ भारत, आतिष्ठ उतिष्ठ, उठो और युद्ध करो, अपना कर्म करो। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कल मैंने कहा था आपने को, आज गया नहीं होगा, नहीं भक्ति विनोद ठाकुर के टीका वाला का लेने गया होगा तो उन्होंने लिखा है पहला विभाग तात्पर्य का है यज्ञ का लक्ष्य, विभाग एक यज्ञ का लक्ष्य नंबर एक। प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में जिस योग का वर्णन किया गया है उसका नाम है सनातन योग। ये शब्द भक्ति विनोद ठाकुर ने उपयोग किए हैं, सनातन योग। तो इस अध्याय में सनातन योग का वर्णन है। उसका दूसरा अर्थ ये है जीव के नित्य कार्य, स्वरूपगत जीव का कार्य, नित्य स्वरूपगत जीव के कार्य को सनातन योग कहते हैं। जीव के नित्य स्वरूपगत कार्य को सनातन योग कहते हैं। इस योग के दो विभाग हैं। कौन से योग के दो विभाग हैं? सनातन योग के, और सनातन योग क्या है? जीव का स्वरूपगत कार्य। तो दो विभाग, विभाग में पहले विभाग को कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, भौतिक पदार्थों को बलिदान करना, यज्ञ करना, और दूसरे को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये तो हम पढ़ के आए ना, यज्ञ के दो विभाग थे, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अच्छा, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान वाला श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वो ज्ञान क्या है?
स्वरूप,
आत्मा के आत्म का ज्ञान, यहां तक अभी आत्मा के ज्ञान का ही वर्णन है, आत्मा की अनुभूति की ये हुआ ज्ञान, वो थोड़ा ऊपर का स्तर है। यहां जो गीता का ज्ञान, यहां तक आत्मा का अनुभूति, ठीक है। प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है ज्ञान किसका, आत्मा का, और उसके लिए एक और शब्द लिखा है, देखिए आपके पुस्तक में क्या लिखा है, शुद्ध जीव के कर्म, ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, जीव के शुद्ध कर्म लिखा है, जीव के, हाँ ठीक है, जीव के शुद्ध आध्यात्मिक कर्म। तो ये ज्ञान की परिभाषा लिखी है प्रभुपाद जी ने, ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर है, अगर द्रव्य यज्ञ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाए तो भौतिक है। द्रव्य यज्ञ किया जाए, दान पुण्य किया जाए, परंतु भगवत तत्व को नहीं जाना जाए तो भौतिक है, ये पहली बात। परंतु अगर कोई यज्ञ आध्यात्मिक लक्ष्य से करे और आध्यात्मिक उसका उद्देश्य हो अथवा भक्ति पूर्वक करे तो वो यज्ञ सिद्ध होता है, तो उसमें आध्यात्मिक लाभ है, ये समझना चाहिए। तो अब पहला जो यज्ञ के उद्देश्य का विभाग है वो पूरा होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, सनातन योग क्या है और यज्ञ के कितने प्रकार के हैं, भौतिक स्तर पे कौन सा यज्ञ है, आध्यात्मिक स्तर पे कौन सा यज्ञ है। अब प्रभुपाद जी इसके दूसरा विभाग बलदेव विद्याभूषण के, नहीं आपने क्या नाम बताया अभी, भक्ति विनोद ठाकुर के दृष्टिकोण से कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के दो स्तर। अभी तक जो ज्ञान बताया था आध्यात्मिक है आत्मा का, उसके दो स्तर, आध्यात्मिक ज्ञान के दो स्तर। ये सबको मालूम है कौन से हो सकते हैं, जीव का स्वरूपगत कर्म, यह एक ज्ञान जिसको कहा जाए कि आत्मा के साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का स्वरूपगत जो कार्य है उसको समझना। दूसरा है परमात्मा के स्वरूप को समझना, दूसरा ज्ञान है परमात्मा को समझना। तो ज्ञान के दो स्तर कौन से हैं, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान या भगवत तत्व का ज्ञान, तो ये ज्ञान के दो स्तर हैं। तो भगवान के विषय में सत्य को जानना, अब प्रभुपाद ने दो लाइनें और लिखी इन चीज को समझाने के लिए, क्या लिखा है, जिसको कोई कठिनाई नहीं है ऐसे सिद्ध और शुद्ध ज्ञान को समझने में कि हम भगवान के अंश हैं, और ऐसी समझ वाला बड़ा लाभ है उसको, और आसानी से वो भगवान की सेवा के दिव्य कार्य कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने दो ज्ञान और दो ज्ञान का उपयोग, पहला ज्ञान जीव का स्वरूप का, उसका उपयोग भगवान की सेवा, इसका अर्थ ये निकलेगा। दो ज्ञान है, एक ज्ञान जीव के स्वरूप को जानना, दूसरा भगवान की सेवा में लगाना, भगवान को समझ के स्वामी, अपने को सेवक समझ के सेवा में लगाना। अब आगे का विभाग है भगवान के दिव्य कार्य या लीलाओं को समझना, ये तीसरा विभाग है हमारे तात्पर्य का। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को या लीलाओं को सीखना, ये इस चौथे अध्याय के आरंभ में ही कहा गया है। किसने बताए हैं? स्वयं भगवान ने अपने विषय में बताया। पहले 9 श्लोकों में भगवान ने अपने 10 श्लोकों में भगवान ने अपने विषय में दिव्य ज्ञान दिया है। उसमें भगवान ने अपने जन्म और कर्म दोनों को दिव्य बताया है। ये बात समझ ली। प्रभुपाद जी कहते जो गीता के इस संदेश को नहीं समझता है वो श्रद्धाहीन है, और जो श्रद्धाहीन है वो उसको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है। जीव को मानव शरीर में थोड़ी सी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या है? गीता की शिक्षाओं को यथारूप नहीं समझना। ये प्रभुपाद जी की भाषा है। अब इसको समझो, दोबारा अच्छी तरह समझो। हरे कृष्ण। भगवान ने अपने विषय में, कर्म और जन्म के विषय में दिव्य ज्ञान दिया है, और ये भगवद गीता में है और 4th अध्याय के पहले 10 श्लोकों में है। जो इसको समझने का प्रयास नहीं करता है वो अपने, जो अल्प स्वतंत्रता जीव है उसका दुरुपयोग करता है। हाँ सही है ना, ये बात समझ में आया? तो अब बताइए कि दुनिया में कितने लोग दुरुपयोग करते हैं? सभी दुरुपयोग करते हैं। हाँ पढ़ने वाले भी दुरुपयोग करते हैं, न पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले भी नहीं भगवान के दिव्य है जन्म और देव उनको नहीं जानते। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इतने सारे भगवान के शिक्षाओं के उपरांत भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को मूर्ख लोग, पहले नंबर के मूर्ख नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो पहले नंबर के मूर्ख है। अब है आगे का विभाग, यज्ञ के उद्देश्य का दूसरा विभाग। पहला था यज्ञ का उद्देश्य का पहला विभाग। तो हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, किस श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं? 42। क्या है? तस्माद अज्ञान संभूतम ज्ञान, तस्माद अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान आसीन आत्मना चित्तत्व संक्षम आतिष्टो तिष्ठ परंतप। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने पहला विभाग बताया क्या? यज्ञ का पहला लक्ष्य, यज्ञ के लक्ष्य का पहला स्तर। तो यज्ञ का कौन सा नाम बताया प्रभु जी? कौन सा योग प्रभुपाद ने बताया? योग कौन सा है 4th अध्याय में? कर्म योग और ज्ञान योग है। इस अध्याय में नया एक नाम प्रभुपाद जी ने दिया है भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य से, सनातन योग। सनातन योग और सनातन योग किसको कहते हैं? जीव का स्वरूपगत कार्य, नित्य जीव का स्वरूपगत कार्य। सनातन का मतलब नित्य, तो जीव है नित्य, जीव का जो नित्य कार्य है उसको सनातन योग कहते हैं। और योग शब्द आने से क्या होता है? शब्द योग आया तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है। और प्रभुपाद ने लिखा है इस योग के अंतर्गत दो भाग है। इस योग के कौन से दो भाग हैं? इधर कौन से दो भाग हैं? द्रव्य में यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ, इसके दो विभाग हैं। इन दो विभागों को प्रभुपाद ने स्पष्ट कैसे किया है? द्रव्य यज्ञ करे आध्यात्मिक दृष्टिकोण न हो तो भौतिक है, और दिव्य द्रव्य यज्ञ में आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो आध्यात्मिक उसका लाभ है। यह विभाग पूरा हुआ। दूसरा विभाग है दो स्तर ज्ञान के। पहला स्तर आत्मा के स्वरूपगत ज्ञान, नित्य कृष्ण नित्य सेवा, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और दूसरा भगवान के स्वरूप का बोध। और जिसको ये बोध है वो मुश्किल में नहीं पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक है, वो आसानी से भगवान के दिव्य, प्रभुपाद ने लिखा या ये है भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है, वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। अब आ गया भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझना, उसके लिए चौथे अध्याय के आरंभ में भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन किया है। जो गीता में इस सिद्धांत को नहीं समझता वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और ऐसा व्यक्ति पहले नंबर का, ठीक है। अब ये क्या, मैं भाषा बोल रहा हूं जो बोलने की भाषा है, लिखने में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और साहित्य होता है, ये भाषा समझी जा सकती है, तो भाषा समझने वाली में बोलना चाहिए। अब है यज्ञ का उद्देश्य दूसरा विभाग, यज्ञ क्यों करते हैं, उसके लिए आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञान का नाश कृष्ण भावना के विधि विधानों या सिद्धांतों को धीरे धीरे समझने से संभव है। अज्ञान का मिटना, अज्ञान कैसे मिटेगा, बोला कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करने से धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा, और कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए इस चौथे अध्याय में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है, और वो यज्ञ नाम लिखे हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रियों को संयम में करने का यज्ञ, योग साधन का यज्ञ, तप यज्ञ, और बहुत सारे, और फिर द्रव्य यज्ञ। तो जितने यज्ञ हम 12 कितने गिने थे, 12-13 जो भी यज्ञ थे, वो सब यज्ञ काय के लिए हैं, कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। कैसे करेंगे ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत, भाई ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत कैसे करेंगे ये बताइए। वो क्या चीज करेंगे जिससे चेतना शुद्ध होगी, यज्ञ में क्या होता है जिससे चेतना शुद्ध होगी, भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाते हैं, कुछ त्याग करना पड़ता है यज्ञ के लिए, कुछ देना पड़ता है, निष्काम कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म हृदय को पवित्र करता है और ज्ञान को यज्ञ में। यज्ञ का अर्थ दूसरा क्या है, सामान्य यज्ञ का अर्थ है बलिदान, कोई चीज देना, यज्ञ का मतलब कुछ अर्पण करना, तो जब कुछ चीजें देंगे तो हृदय पवित्र होगा, तो पवित्र हृदय में कृष्ण भावना का जागृत होना संभव है। तो होगा क्या यज्ञ से, हमने क्या सीखा, सारे यज्ञों का परम लक्ष्य क्या है, एक शब्द है, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं एक शब्द पड़ा, पूरा विभाग है चौथे अध्याय का, एक चौरे अध्याय का, चौथे अध्याय का पूरा विभाग है, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं किसमें? ज्ञान में। क्या एक शब्द पक्का करो, किसमें? सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं ज्ञान में। अब इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? क्योंकि यज्ञ निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान में प्रवेश होता है। तो इसकी विधि ये होगी, कैसे करेगा ज्ञान यज्ञ, कैसे ज्ञान लाएगा? बोला निष्काम कर्म से। यज्ञ निष्काम कर्म है जो हृदय को शुद्ध करेगा और तब ज्ञान में, ज्ञान का उदय होगा। ठीक है, और भी यज्ञ आगे थे, स्वाध्याय यज्ञ था, वर्णाश्रम के अंतर्गत शिव प्रभुपाद ने ये पूरा लिस्ट लिखी है, देखा लिखी है ना पुस्तक में अपने, लंबी लिस्ट लिखी है यज्ञों की, वर्णाश्रम विभाजन ये सब लिखा है, इन सबको यज्ञ कहा जाता है। और ये सारे यज्ञ किसके ऊपर आधारित है? नैमित कर्म के ऊपर आधारित है। नैमित कर्म किसके ऊपर आधारित है? वर्णाश्रम के ऊपर। वर्णाश्रम के नैमित कर्मों के ऊपर आधारित है सारे यज्ञ। तो यज्ञ, यज्ञ कैसे होंगे? कर्म से होंगे। कहां से आए ये यज्ञ? ये कर्म, यज्ञ का करने का कहां आदेश है? वेद में। वेद ने कर्म का आदेश दिया, कर्म से यज्ञ होगा और यज्ञ से हृदय पवित्र होगा और ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारे यज्ञों के अंदर, इन सारे कार्यों के अंदर, ये जो जिसको कौन से कार्य अभी लिखा? नियमित कार्य। क्या लिखा? नियम वाले जो कार्य है वेदों में लिखे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? बहुत मुख्य उद्देश्य उसका क्या लिखे, देखो किताब में क्या लिखा है, आत्म साक्षात्कार करना। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार का मतलब। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आपने साक्षात्कार किसको समझते हैं? साक्षात्कार किसको कहते हैं? पत्रकार जब आमने सामने बात करते हैं कहते हैं साक्षात्कार। तो आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा की अनुभूति होना। तो ये सारे कार्य जो नियमित कार्य हैं जिनके द्वारा यज्ञ होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। अब प्रभुपाद जी इस आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य के विषय में, जो भगवद गीता में इसको जानता है अच्छी तरह से वो है भगवद गीता का वास्तविक पाठक, और जो इसको नहीं जानता है और इसके विषय में संदेह करता है उसका पतन होता है। कृष्ण के वचनों के ऊपर, अधिकृत वचनों के ऊपर संदेह करने वाले का पतन होता है। ये प्रभुपाद जी ने कहां से लिखा? आपके विचार में ये लिखा कहां से लिखा? दो श्लोकों का भाव लिखा है। कौन से दो श्लोक हमने पढ़े हैं इनसे पहले? 39, 40, 41 या 39, 40? अन्य अधिकारी और अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी और अन्य अधिकारी, एक अधिकारी एक अनधिकारी। जो अधिकारी है वो वास्तविक है, जो अन्य अधिकारी है वो उनका पतन होगा। तो वास्तव में तीन कौन से विशेषता थी, कौन योग्य कौन है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तीन चीजें, श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर तत्पर संयत इंद्रिय। तीन बातें, क्या तीन बातें थी दोबारा याद कीजिए? श्रद्धावान कर्म में, वो जो जिस जो श्रद्धा जिस चीज की है उसको करने के लिए तत्पर, और इंद्रियों को संयम। तीन बातें, इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, और जिसके ऊपर श्रद्धा है उस करने में तत्परता, उस पे निश्चय आत्मिक काम करे। और कौन अधिकारी है, तीन क्या है उसमें? अज्ञा, अश्रद्धालु, संशय आत्मा। और इन तीनों को प्रभुपाद जी ने कैसे समझाया, इस तरह इसका कैसे समझाया? अज्ञा किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के ज्ञान को न जाने पशु जैसा अज्ञानी कहलाता है, ये हुआ अज्ञा की परिभाषा। अश्रद्धालु की परिभाषा प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? शास्त्र को जानता है, श्लोक उद्धृत करता है, परंतु जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं। और तीसरा है संशय, इसका क्या परिभाषा है? ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, परंतु संशय है किसके ऊपर? हाँ, मेरा लक्ष्य इससे पूरा होगा कि नहीं करूंगा, लक्ष्य के ऊपर संदेह है। क्या ये भक्ति में कर रहा हूं इससे भगवान मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा कि नहीं? इन तीनों में से सबसे ज्यादा संशय वाला विनश्य। तो उन्हीं बातों को प्रभुपाद जी ने यह कैसे लिखा है? देखो, ये दोनों बातों को प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, अब यह अंतिम लाइन को पढ़ो, कैसे लिखा है? वास्तविक पाठक गीता का कौन है? जो गीता के उद्देश्य को समझता है, और जो इसको नहीं समझता है, इसमें संदेह करता है, वो उसका पतन होता है। अब इस तात्पर्य का चौथा विभाग, अब यह अंतिम विभाग है, दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना। प्रॉपरली का मतलब विधिवत, दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना, ये इसके तात्पर्य का चौथा विभाग है। विधिवत दिव्य ज्ञान को सीखना, और ये प्रभुपाद जी ने पहली लाइन लिखी है, कहां से लिखी है जरा आप बताइए, कोई बुद्धि से पढ़ के क्या लिखा है? अतः ये सबको सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, भगवद गीता अथवा कोई और शास्त्र प्रमाणिक गुरु के सेवा और शरणागति से सीखना चाहिए। कौन सा श्लोक है? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो ये वो श्लोक है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज। पूरे देखो अध्याय का सारांश लिखा है कि नहीं प्रभुपाद ने, इस तात्पर्य में पूरा अध्याय लिखा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब प्रभुपाद ने दूसरे श्लोक का, भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक के आधार के ऊपर लिखा है कि प्रमाणिक गुरु कौन है? जो शिष्य परंपरा में आए, कब से आए? अनादि काल से। और जो भगवान ने सूर्य देव को दिया था, उसी शिक्षा में कोई भी परिवर्तन न करे, यथारूप शिक्षा को दे। और तब से ये शिक्षा कैसे धरती के ऊपर आई है तो हम जानते हैं, इक्ष्वाकु महाराज लाए, ठीक है। इसलिए गीता के मार्ग पे जैसे गीता ने सिखाया है ऐसे ही चलना चाहिए, और सावधान होना चाहिए किससे? लिखा क्या है? सावधान होना चाहिए स्वार्थी, स्वार्थी अपने अपने मान, अपने मान सम्मान के लिए गीता का अर्थ, अपने मनमाना अर्थ निकालते हैं, उनसे सावधान होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है, और उनके सारे कार्य दिव्य हैं। और जो इसको जानता है वो मुक्ति के मार्ग पे है। वो तो भगवत गीता के आरंभ से ही मुक्त है। जैसे भगवत गीता का आरंभ करता है तो उसको मुक्त ही समझना चाहिए। यहां हमारा ये तात्पर्य पूरा होता है। तो इसके चार विभाग आपने देखे अभी, ये चार विभाग श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किए हैं ऐसे, और श्री प्रभुपाद ने ये तात्पर्य वहां से लिया है। तो यहां हमारा चौथा अध्याय आज पूर्ण आहुति पे पहुंचता है, दिव्य ज्ञान वाला ये अध्याय। सो इस अध्याय के विषय में आपका कोई और प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं तो आज कुछ और काम करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ आप लोग यहाँ बैठ के कुछ पढ़ें, बताएं। पहले कोई प्रश्न है? अच्छा, हमारा एक प्रश्न तो गुरु जी के विषय, और क्या इस विषय में और क्या प्रश्न बचे हैं? अंतिम प्रश्न क्या है? संशयालु व्यक्ति और अश्रद्धालु की क्या गति होता है, पतन होता है? एक श्रद्धालु और श्रद्धालु को ज्ञान मिलता है, संशय वाले का पतन होता है? नहीं, तो ऐसे ही है सीधा। हाँ, दोनों श्लोकों को देख के साथ। हाँ जी, और कोई प्रश्न रह गया क्या? नहीं तो फिर अब हम दूसरा कोई आज एक अभ्यास करते हैं। हमारे पास है आधा पौना घंटा, एक नया अभ्यास शुरू करते हैं। नौ नंबर श्लोक को बहुत अच्छा श्लोक है। हमने आपको उस दिन इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ा नहीं था, आपको तीन शब्द सिखाए थे। वीत का मतलब छोड़ना, राग भय और क्रोध, इनके लिए तीन शब्द बताए थे। बताइए, कर्मी ज्ञानी, कर्मी निर्विशेषवादी और शून्यवादी, कर्मी निर्विशेषवादी और शून्यवादी। कर्मी की है आसक्ति, ज्ञानी का है भय कि मेरा शरीर रहेगा, मेरा रूप रहेगा तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, ये उसको भय है। और जो इधर उधर के सारे सुन के कहता सब कुछ नहीं है, सुनिए, जो या तो नशा करेगा या तो फिर शून्यवादी में जाएगा, नहीं तो हेपी बनेगा, नशा करेगा, प्रभुपाद ने लिखा है। परंतु ये हमने तात्पर्य पढ़ा नहीं था, आज इस तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, इसके तात्पर्य में आचार्यों के भाव को भी पढ़ लेते हैं। भगवद गीता है चार, ओके, चार का ये है दस, ओके। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पूता का अर्थ क्या है? पवित्र होकर। मदभाव का अर्थ क्या होगा? मेरे पाप्रेम को प्राप्त करेगा, पवित्र होके मेरे प्रेम को प्राप्त किया। किसने? बहवो, बहुत सारों ने। कैसे? ज्ञान और तपस्या, ज्ञान से और तपस्या से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और तपस्या किया, और बहुत से लोगों ने पवित्र होके ज्ञान और तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया। तो कौन सी ज्ञान और तपस्या किया? बोला तीन चीजों का त्याग किया। वीत का मतलब त्याग किया, किसको? राग को, भय को और क्रोध को। और क्या किया? एक बार मन मया माम उपाश्रता, इसका अर्थ क्या है? मन मया, मन मया, मैं मुझ में मन को तलीन किया। कैसे? श्रवण कीर्तन से। बलदेव विद्याभूषण और विश्व चक्रवर्ती दोनों कहते हैं मन मया माम, मन मया का मतलब मुझ में मन श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया, मन मुझ में श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया। और माम उपाश्रता का मतलब मेरा उपाश्रित, आश्रण का मतलब क्या? आश्रय का मतलब क्या? शरण लेना, मेरा शरण लेकर, मेरा शरण लेकर मन मुझ में कीर्तन श्रवण कीर्तन से लगाकर पवित्र होकर ज्ञान से तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया, तीन चीजों को छोड़ के। अब तीन चीजों के लिए बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं वो समझ लेते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझेंगे। पहले नहीं, आज भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलदेव विद्याभूषण बोला आज भी बहुत से लोग इस मेरे जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो रहे हैं। ये तो बात, क्योंकि आगे यही बात चली आ रही है। और भगवान यहां अपने उस जन्म और कर्म की दिव्यता का प्रमाण देते कहते हैं बहुत से पहले आ चुके हैं, तपस्या से और ज्ञान से पवित्र हुए और मेरे भाव को प्राप्त किया। और ये ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान? जन्म और कर्म का ज्ञान। कौन सा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया? तो जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। बोला तपस्या क्या है? बोला इस बात को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना तपस्या है। ये बात समझने के लिए जो शास्त्रों का अध्ययन किया वो तपस्या है, स्वाध्याय किया वो तपस्या है। और तपस्या का दूसरा कारण क्या लिखते हैं? कि बहुत तर्क करने वालों का खंडन करना भी तपस्या है। आप प्रचार करने जाओ, लोग उसके तर्क करें तो उनका खंडन करें, ये भी तपस्या है। तो वितरकों का खंडन की तपस्या, शास्त्र के अंदर से भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रमाण तक प्रमाण उसके लिए ढूंढना, ये तपस्या है। ये कैसे, ये लोग कैसे हैं जिन्होंने ऐसे प्राप्त किया? तो कहते हैं उन्होंने किसको छोड़ा? राग को छोड़ा, भय को छोड़ा और क्रोध को छोड़ा, और मेरी सेवा में लगे माम उपाश्रता, श्रद्धा से, केवल मेरी, मन माया मेरी, केवल मेरी एकमात्र सेवा में लगे श्रद्धा से। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी पहली जो लाइन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं राग के लिए। राग के लिए क्या लिख रहे हैं? जैसे ऊपर कहा गया है ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है, कठिन क्या है? भगवान के परम सत्य, आसक्त व्यक्ति भगवान के परम सत्य को नहीं समझ सकता है। इसका मतलब कौन है ये आसक्त? कौन है? रागी, भौतिक, जिसको राग है। राग कहां से आया? बोला शरीर में आ सकते हैं। प्रभुपाद ने क्या लिखा? वो शरीर में आ सकते हैं और शरीर के ही भौतिक कार्यों में लगे हैं, इसलिए परम पुरुष भगवान को जानना उनके लिए संभव नहीं। तो ये किसका है? आसक्ति का। अब ऐसे भौतिकवादी भगवान का दिव्य विग्रह है जो अविनाशी है, जो पूर्ण ज्ञान और आनंदमय है, उनका भौतिक विचारधारा है और उनका पूरा शरीर, उनका विचार है कि भगवान का शरीर भी नाशवंत है, अज्ञान से भरपूर है और दुखदायी है। क्योंकि हमारा शरीर अज्ञान से भरपूर है, दुखदायी है, नाशवंत है, तो भगवान का भी ऐसा होगा। तो ये असल में कौन हो गए? भौतिकवादी, निराकारवादी। तो ये जो है भय की परिभाषा यहां से शुरू हुई है। प्रभुपाद जी कभी आगे पीछे लिखते 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 यहां ये भय की परिभाषा है। अब कैसे? इसलिए जो भगवान के शरीर को अपने मन में अपने जैसा समझता है, हमारा जैसा शरीर ऐसा भगवान का शरीर है, हमको दर्द होगा उसको दर्द होगा, हमको भूख लगती है उसको भूख लगती है, अगर ये विचारधारा होगी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं? भगवान के कौन से रूप को मानते हैं? विराट रूप को, विश्व रूप को, जो भौतिक है। आज एक शब्द याद करके पक्का याद कर लीजिए, भगवान का विश्व रूप भौतिक है, भौतिक जगत में है और अस्थाई है। इसका कोई भी अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं। भगवान का विश्व रूप भौतिक जगत में है, अस्थाई है, जैसे भौतिक जगत अस्थाई है ऐसे अस्थाई है। इसका कोई अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है और इसके उपासक भौतिकवादी नव शिक्षक होते हैं। भक्तों को इसमें कोई रुचि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे भौतिकवादी, ये मायावादी लोग कहते विराट रूप तो महान है, विश्व रूप महान है, परंतु कृष्ण नहीं। दिखाया किसने विश्व रूप? कृष्ण ने। जिसने दिखाया उसकी मान वो मान नहीं है, जो दिखाया वो चीज मान है। यही दुनिया सारी की समस्या है। प्रभुता को भजे सब, प्रभु को भजे न कोई। भगवान की जो ये प्रभुता है दुनिया, इसके पीछे सब पड़े हुए, लेकिन भगवान का कोई भजन नहीं कर रहा। बहुत बहुत सुंदर एक नव युवती कन्या थी, महात्मा उसको एक लाल कपड़े वाला ऐसे घूर घूर के देख रहा है। किसने कहा महाराज सन्यासी होकर नवज्योति को देख रहा है? बोले इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसको जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाले को देख रहा हूं। तो जो ये संसार बनाया है उसके बनाने वाले को देखना चाहिए कि संसार को देखना चाहिए? एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया संसार का, उसने कहा महाराज कुछ शिक्षा दो। महाराज ने कहा शेर बनो, कुत्ता मत बनो। तो इसका क्या अर्थ माता जी? महाराज इसका अर्थ क्या? बोला कुत्ते को आप पत्थर मारो, कुत्ता पत्थर की ओर भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। शेर मारने वाले को देखता है, किससे मारता है इसको नहीं देखता है। दोनों में अंतर पता लगा? कुत्ता जो चीज मारोगे उसके पीछे भागेगा, मारने वाले को नहीं देखेगा, और शेर किससे मारता है नहीं, कौन मारता है उसको देखता है। बोला इसका अर्थ है तुम सबके पीछे भगवान को देखो, दुनिया में क्या हो रहा है उसको मत देखो, इसके पीछे काम कौन कर रहा है उसको देखो। क्या हम तो देखते हैं सामने वाली चीज, उसके पीछे कौन है? तब महात्मा कहते हैं सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। भगवान ने भेजा है, दुख आया तो मेहमान है, चला जाएगा, रहेगा थोड़ी, रुकेगा क्या दुख? नहीं, चला जाएगा। और सुख भी पकड़ो तो भी नहीं रुकेगा, जाएगा। इसलिए नमस्कार करो, भगवान ने भेजा है। तो यह बात क्या कर रहे थे, ये भौतिकवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में विश्वास नहीं रखते, उसको अपने जैसा मानते हैं, परंतु विराट रूप में उनकी आसक्ति होती है, उसको मानते हैं। प्रभुपाद जी लिख के फिर क्या कहते हैं, इसलिए निर्णय क्या निकालते हैं कि भगवान निराकार है। निर्णय क्या निकाला, भगवान है निराकार। इसलिए मुक्ति के उपरांत हमारा आकार रहा तो बड़ा दुखदाई होगा। यह है मायावादी निर्विशेष निराकारवादी, उनका भय क्या है, मुक्ति के उपरांत शरीर का रहना उनके लिए भयानक है, नहीं चाहिए शरीर, ब्रह्म में लीन होना है उनको। जब भगवान के व्यक्तिगत गुण रूप नाम लीला और उसके शरीर के विषय में बताया जाता है तो उनको भय लगता है, वो तो ब्रह्म में लीन होना ही चाहते हैं। और किस में लीन होना चाहते हैं प्रभुपाद? निर्विशेष में लीन होना चाहते हैं, यही लिखा है ना। लीन होना, निराकार शून्य में लीन होना चाहते, ठीक है। तो ऐसे जो भयभीत है उनका कारण क्या है, ये जो भय के जितने स्तर है जीवन में, जिनको आध्यात्मिक अस्तित्व भगवान के का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भयभीत है। ये भय किसके अंदर रहता है, जिसको भगवान के अस्तित्व का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आगे आगे ऐसे कुछ लोग हैं, वो तो आध्यात्मिक अस्तित्व को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, ये हो गए तीसरे। अब चर्चा चल रही है तीसरे वाले की, किसकी? क्रोध वाले। तो पहला राग वाला पूरा होगा, भय वाला पूरा हो गया, अब क्रोध वाला शुरू हो रहा है। बहुत से सिद्धांत एक दूसरे के विरोध, जो दर्शन है और मन मनोकल्पना है, उनसे इतने वो हताश हो जाते हैं, वो मूर्ख ये निर्णय निकाल लेते हैं सब कुछ शून्य है, अंत में सब कुछ शून्य है, सब कुछ अंत में शून्य है, ऐसे लिखा है ना। अब यहां इतना लिख के प्रभुपाद जी फिर पुनः सबको साथ मिला रहे हैं। ऐसे लोग रोगी, उनकी रोगी स्थिति है, ये लोग बीमार हैं, जीवन के विषय में बीमार हैं, कुछ उसमें भौतिकता में, ये देखो पुनः प्रभुपाद जी तीनों को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ है आस, कुछ है क्या है रागी, कुछ है रागी, इसलिए उनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं, और उनमें से कुछ ब्रह्म में लीन होने वाले हैं, ठीक है, और कुछ किसी में विश्वास नहीं करते, इसलिए क्रोधित हो जाते हैं, निराशा। क्या हो, क्यों क्रोधित होते हैं? निराशा के कारण, निराशा के कारण कुछ समझ में नहीं आता, ये कह रहा है, वो कह रहा है, जाओ सब कुछ भी नहीं, ये हाँ। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अब तीनों को एक लाइन में प्रभुपाद ने लिखा है, और फिर लिखते हैं ये जो क्रोध वाले हैं ये शून्य वाले हैं, ये किसी नशे का सहारा लेते हैं, मादक पदार्थ का सहारा लेते हैं, और उससे जो थोड़ा सा उनको नकली क्या मति भ्रम होती है, किसको जैसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के समय में हिप्पी लोग वो गांजा पीते थे और कहते थे हाँ बहुत भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, उतरने के बाद अपने आप को ही नहीं देखते थे, फिर पागल। तो इसके उपरांत फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी फिर दोबारा तीनों के लिए लिखते हैं, तीनों स्तरों से, राग से, भौतिक भय से और क्रोध से हमको बचना चाहिए। तीनों को पुनः कठा करके एक लाइन में लिखा है, भाषा थोड़ी सी संस्कृत साहित्य के है लेकिन अर्थ ये तीनों है, ये लग रहा है कि नहीं तीनों लिखे हैं ना, तीनों को पुनः लिखा है, पहले एक एक करके लिखा फिर दो बार तीनों को कठा लिखा, इसलिए वीत का अर्थ है पहले, इसलिए वीत त्यागना चाहिए तीनों स्तरों को, कौन सा आसक्ति का स्तर, भौतिक हाँ और आध्यात्मिक जीवन का निग्लिजेंस, क्या लिखा है कुइच्छा निग्लिजेंस, उसका कोई उनका महत्व नहीं देना, आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देना, उपेक्षा। और इन तीनों चीजों के छूटने के लिए प्रभुपाद जी कहते क्या करना चाहिए, ये कौन सा श्लोक है, श्लोक में कौन सा शब्द है, मत परा मन मना नहीं, इसी श्लोक में शब्द है, मत मद आश्रय है, मन माया मद आश्रय, मद आश्रय ये मेरा शरण लेने से ये हो सकता है, मां उपासते ठीक है, वीत राग भय क्रोधा मन माया मां उपाश्रता, उपाश्रता ये वो शब्द है, ये तीनों स्तर से बचने के लिए मैं भगवान का शरण लेना चाहिए, लेकिन भगवान का शरण कैसे ले, गुरु के निर्देश में, कौन से गुरु के निर्देश में, जो शिष्य गुरु की परंपरा में आया है और उससे क्या सीखना चाहिए, साधन भक्ति, ये जो लिखा है ना रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसका अर्थ है साधन भक्ति, क्या लिखा है भक्ति के, इसको कहते हैं साधन भक्ति सीखनी चाहिए। तो इन तीन चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए, कैसे गुरु के शरण में, कौन से गुरु के, प्रमाणिक गुरु के, प्रमाणिक गुरु कौन होता है, जो शिष्य गुरु परंपरा में हो, उससे क्या सीखना है, साधन भक्ति के नियम, ये लिखा एक लाइन है लेकिन इसको आप ऐसे टुकड़ा करके समझोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा, ऐसे पढ़ के जाओगे तो अटकेगा नहीं, लग रहा है ऐसे कि अटक ऐसे आप, ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे, उनका तात्पर्य ऐसा होता है कि ये क्यों ऐसे लिखा है, इसका अर्थ क्या है, प्रश्न उत्तर उसमें आप स्वयं करो। अब प्रभुपाद जी आते हैं मदभावम के ऊपर, भाव भक्ति साधन भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति को उत्पन्न करना है, इसका मतलब भाव साध भाव जो है भक्ति का अंतिम चरण है, प्रभुपाद ने भाव और प्रेम को साथ मिला है क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है, तो भगवान का शरण लेंगे, गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे तो साधन भक्ति क्या करेगी, भाव भक्ति को प्रकट करेगी, एक लाइन और बढ़ा दो, अभी जो हमने बताया उसमें एक लाइन और बढ़ा दो, गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे वो क्या करेगी, बोलो भाव भक्ति को जागृत करेगी। फिर प्रभुपाद जी भक्ति सामित सिंधु से ये भाव तक कैसे पहुंचा जाए उसका क्रम क्या है वो पूरा एक श्लोक दिया है, अदौ श्रद्धात साधु सतत साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवर्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तत आसक्ति ततो भावा तत प्रेमा अभ्युंचित्ति साधकानामयं प्रेमा क्रोधा प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। और ये सब लिख कर प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते धीरे धीरे भक्ति के साधनों से गुरु के निर्देश में हम उत्तम स्तर के ऊपर पहुंच जाएंगे और राग से भय से और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे? भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ के, तब हमारे को ये निर्विशेष और शून्यवाद प्रभुपाद जी का मंत्र लिख दिया गया। प्रभुपाद ने लिखा है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणा, ये प्रभुपाद ने लिखा असल में ऐसे है जैसे स्वयं जो कर रहा था वही लिखा है कि मैं इन सब लोगों को ये सब, एक तो शून्यवादी हो गए, एक सब कहते थे मैं भगवान हूँ, तो ये सब वही थे। तीनों प्रकार के लोग प्रभुपाद जी के पास आए, आसक्त भौतिकी आसक्त लोग आए जो कर्म में लगे हुए थे, दूसरा जो घर छोड़ के धंधा छोड़ के और ज्ञानी बने हम भगवान तुम भगवान वो आए, और तीसरे जो परेशान हो के ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है शून्यवाद कुछ नहीं है नशा पियो मौज करो वो आए। तो प्रभुपाद ने इन तीनों को निर्विशेष शून्यवाद से मुक्त किया और तब कोई भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ये हमारा ये तात्पर्य पूरा हुआ, ये तात्पर्य हमने छोड़ा था उस दिन, अच्छा हुआ आपने याद कराया। तो इसमें क्या लिखा है कहाँ ये आपको देखना है, आपको प्रभुपाद जी को तात्पर्य पढ़ना सीखना चाहिए कि कौन से श्लोक के शब्द को कहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको अगर आप समझ गए तो आपको फिर बोलना आ जाएगा। अब हमारे पास 15 मिनट हैं, आप में से कोई भी दो वॉलेंटियर एक श्लोक जन्म कर्म च मे देवियम और एक श्लोक एक जो 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 आपको अच्छा लगे उस श्लोक के ऊपर 5 मिनट बोल के समझाओ सबको, किताब किताब नहीं लाना है, क्योंकि आपको भक्ति शास्त्री को पास नहीं करना है, आपको प्रचारिक बनना है या संन्यास लेना है, तो संन्यास लेना है तो भी प्रचारी करना है। इसलिए अब यहाँ एक कुर्सी दूसरी लगाते हैं और आप बैठ